आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, दोबारा हाजिर है मान्या बंसल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने चैप्टर 5 के अंदर कंप्लीट किया था, क्या किया था, वीररस के कवित, राइट भूषण जी। तो अब हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह, चैप्टर नंबर 6। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में मां का चिरवियोग सहना पड़ा। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। जीवन के अभावों ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि धारदार बनाया। तो हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी जो थे, वो देहरादून के निवासी थे, और जब वो 8-9 साल के थे तभी उनकी माँ चल बसी थी। केवल ये ही नहीं, जब उनकी 18 वर्ष में शादी हुई तो उसके कुछ 6-7 साल बाद उनकी पत्नी को टीबी की बीमारी हो गई थी, जिससे वो भी चल बसी। इतने सारे कष्ट होने के बाद भी शमशेर बहादुर सिंह जी की जो कविताएं थी, जो उनका कवित्व था, उसमें दुर्बलता या वो एकदम से ना निर्बल नहीं हो गई, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्रों पाठकों के मन को भाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूखा भी नहीं हूं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। तो जो हमारे कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, वो काफी विख्यात कवि माने जाते हैं और काफी प्रगतिशील कवि माने जाते हैं, क्योंकि उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, वो उसका एक अलग ही संगम करते हैं, अलग ही मिलन करते हैं, और बहुत ही प्यारा चित्रण निकल के आता है। उनकी काफी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूखा भी नहीं हूं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी, और उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन किया हुआ है। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातकालीन सूर्योदय का मुखदृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराते हैं। राख से लीपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़ियां चाक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। तो इस कविता के अंदर, जिसका नाम है उषा, कवि हमें सूर्योदय के टाइम का वर्णन कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही प्यारा वर्णन किया है। और इस सूर्योदय का जो वो वर्णन कर रहे हैं, वो घरेलू वस्तुओं को अपने शब्दों में यूज करके उससे वर्णन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है कविता उषा के अंदर। उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो इस कविता में कवि ने प्रातः काल के सूर्योदय का बहुत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि प्रातःकालीन आकाश नीले शंख जैसे प्रतीत हो रहा है। प्रातःकाल आकाश ग्रामीण चौके जैसे राग से लीपा हुआ प्रतीत होता है। लीपा हुआ चौका गीला लग रहा है, जिससे वातावरण में नमी बनी हुई है। तो जो हमारे कवि हैं शमशेर जी, वे कहते हैं कि जो प्रातः हुई है, जो सुबह का सूरज उगा है और उससे जो उजाला हुआ है, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि नीला शंख हो, और आकाश जो है प्रातः काल का, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ग्रामीण चौके को राख से लीपा गया हो, और वो जब राख से लीपा हुआ है तो वो थोड़ा गीला है, उससे हमें संसार के अंदर, वातावरण के अंदर एक नमी सी महसूस होती है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो सूर्योदय के साथ आकाश पहले काली सिल जैसे प्रतीत होता है, लेकिन काली सिल को सूर्य के उदय के साथ ही लाल केसर से धो दिया गया है। अब आकाश में परिवर्तन हो गया है। आकाश सूर्योदय के पहले काली स्लेट लगता था, लेकिन सूर्योदय के साथ किसी ने लाल खड़िया चाक आकाश में मल दिया है। अब आकाश लाल खड़िया चाक के समान लगता है। तो बच्चों, क्या होता है जब सूर्योदय होता है, तो अगर आपने कभी सूर्योदय देखा है, आपको ये दिखेगा कि एक येलो, ऑरेंज, रेड और ब्लू का मिक्सचर, ऐसे करके रंग जो है वो आसमान में फैल जाते हैं। तो ये जो सूर्योदय का टाइम होता है, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि लाल खड़िया चाक पर आकाश में वो चीज मिल गई हो। जैसे कि मान लो आकाश में गुलाल बिखेर दिया हो, मान लो आकाश के अंदर किसी ने रेड कलर का रंग फेंक दिया हो, वो ऐसा प्रतीत होता है जब सूर्योदय होता है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही है, और जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। तो कवि कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश नीले रंग के समान हो जाता है, वह किसी नीले रंग के जलाशय के समान प्रतीत होता है, और ऐसे जलाशय के समान प्रतीत होता है जिसमें गौर रंग की सुंदरी की देहे हिल रही है। इस प्रकार सूर्योदय के समय उषा का सौंदर्य हमेशा बदलता रहता है। इस प्रकार पूर्ण सूर्योदय के समय उषा का जादू का प्रभाव कम हो जाता है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो अलग अलग रंग जो हैं वो आकाश में बिखर जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया येलो, रेड, ऑरेंज, ब्लू। तो लास्ट वाले स्टांजा में कवि कहते हैं कि सूर्योदय एकदम जलाशय की तरह नीला लगता है। तो उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह जी जो हैं वो कहते हैं कि बिंब नए प्रतीक या नए उपमान जो हैं वो कविता के अंदर हैं। यहाँ तक पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास किया है कवि जी ने, अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बनाया है। इस प्रकार उषा कविता सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। सूर्योदय के समय आकाश नीले रंग के शंख की तरह दिखाई पड़ता है। वह राख से लीपे हुए चौके की तरह लगता है, जो नमी के कारण गीला हो गया है। कवि को सूर्योदय से पहले आकाश काले सिल की तरह लगता है, जिस प्रकार सूर्योदय के कारण लाल केसर मल दिया गया है। आकाश भी नीले रंग के जलाशय के समान लगता है, जिसमें गौर रंग की सुंदरी की देह झिलमिल कर रही है। अतः सूर्य के साथ उषा के जादू का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। कवि भौर के असमान का मुकद्दर्शक नहीं है। वह बौर की असामान्य गति को धरती के जीवन भरे होलाहल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गाफ की सुबह से जुड़ता है। वहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालिमा को चीरकर आने का एहसास कराती उषा। इस प्रकार कवि हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले दृश्य उपमानों का प्रयोग करके जीवन चित्र प्रस्तुत किए कर रहे हैं और प्रकृति की गति की शब्दों में बांधा गया है। तो उषा कविता के अंदर ये जो प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता के लिए कवि ने उसे राख से लिपा हुआ कहा है, जिस प्रकार चौके को हम लोग राख से लीपकर एकदम पवित्र कर देते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा पुराने टाइम में लोग कैसे चौका अपना रसोईया कैसे साफ करते थे, राख लीपकर। राख को बहुत ज्यादा शुद्ध माना जाता था, पवित्र माना जाता था। तो उसी प्रकार जो प्रातःकालीन उषा है ना, वो भी पवित्र है। जो आकाश की निर्मलता के लिए कवि ने बोला है कि काली सिल जरा से लाल केसर से की धो दी गई हो, इस वजह से उसमें नमी है, नम्रता है। क्योंकि जिस प्रकार जो काली सिल होती है, काली सिल को लाल केसर से धोने से उसका जो कालापन है वो समाप्त हो जाता है और वह स्वच्छ निर्मल दिखाई देती है, उसी प्रकार जो है उषा भी निर्मल हो गई है। और उज्ज्वलता के लिए कवि ने नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो कहा है। जिस प्रकार नीले जल में गौरा शरीर कांतिमान और सुंदर लगता है, उसी प्रकार भौर की लाल में, मतलब उसके सौंदर्य में, आकाश की नीलिमा कांतिमान और सुंदर लगती है। तो इस प्रकार जो है कवि ने सुबह प्रातः काल का वर्णन किया है। चलिए आते हैं शब्दार्थ पर। भौर, भौर माने सवेरा पौ फटने से पूर्व का समय। चौका मतलब रसोई घर का फर्श। सिल मतलब रसोई घर में मसला पसीने के काम आने वाला पत्थर। गौर मतलब गोरी। लीपा हुआ मतलब पोता गया। नील मतलब नीला और झिलमिल मतलब चमकती हुई। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उषा कविता में क्या है? उषा कविता के अंदर सवेरे की लालिमा का वर्णन। सेकंड, जादू टूटता है उषा का में जादू का अर्थ क्या है? जादू का अर्थ क्या है? आकर्षण। स, आकर्षण। चलिए बढ़ते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न पे। पहला, भोर का आकाश किसके समान नीला है? भोर का आकाश बहुत नीले शंख के समान है। प्रश्न दो, कवि ने नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा है? नीले आकाश में भोर के हल्के सफेद प्रकाश के मिल जाने पर राख जैसा रंग दिखाई देने के कारण कवि ने उसे राख से लीपा हुआ चौका कहा है। तीसरा, उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? उषा का जादू टूटने का तात्पर्य यह है कि सूर्योदय होते ही आकाश में दिखाई देने वाला उषा का मनोमोहक दृश्य समाप्त हो गया है। बढ़ते हैं लघुरात्मक प्रश्न पर। पहला, लाल केसर तथा लाल खड़ियां चाक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? कवि ने उषा की लालिमा के आकर्षक दृश्य को पाठकों के हृदय में उतारने के लिए कवि ने दो सुपरिचित उपमानों को चुना है। लाल केसर से बना रंग भी उषा की लालिमा जैसा ही होता है। यदि उससे काली सिल को धो दिया जाए तो आकाश में उषा की लालिमा के दृश्य का आभास कराया जा सकता है। इस प्रकार स्लेट का रंग भी काला होता है, उस पर यदि लाल खड़िया यो चाक मल दिया जाए तो भी उसके माध्यम से काले या नीले आकाश में उषा की लाली को मन के पेट पर उतारा जा सकता है। इन दोनों उपमानों से कवि उषा काल के जादू को पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा, उषा कविता में कवि का क्या संदेश है? कवि शमशेर जी हिंदी कविता के प्रयोगवादी कवि में प्रमुख स्थान रखते हैं। उषा कविता में प्रकृति चित्रण में कवि ने कुछ नए प्रयोग दिए हैं। इस कविता में निहित संदेश यही है कि कवि परंपरा से हटकर नवीन उपमानों के प्रयोग से पाठकों की प्रकृति के प्रति रुचि बढ़ाना चाहता है। कवि ने पाठकों के साथ ही कवियों को भी चुनौतीमय संदेश दिया है कि वे परंपरा से हटकर प्रकृति के प्रति लोगों का अनुराग जगाएं। तीसरा प्रश्न, उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं क्या हैं? शमशेर एक प्रयोगवादी कवि है। उन्हें कविता के शिल्प कला पक्ष में नए नए प्रयोग करने में आनंद आता है। कविता उषा में भी कवि ने भोर के प्रतिपथ बदलते दृश्यों को शब्दों में बांधने के लिए नए नए उपमानों का प्रयोग किया है। प्रातःकालीन आकाश को नीला शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, काली सिल पर लाल केसर, लाल खड़िया चाक से मली स्लेट तथा नीले जल में झिलमिलाते गौर वर्ण शरीर जैसे नए उपमानों से प्रस्तुत किया है। अतः उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं उसमें नवीन बिंब योजना है। निबंधात्मक प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह की उषा का प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। भोर होने को है, गहरा नीला आकाश एक विशालकाय नीले शंख जैसा लग रहा है। नीले आकाश में भोर का धुंधला प्रकाश ऐसा लगता है जैसे वह राख से लीपा गया चौका हो जो अभी गीला है, अथवा ये आकाश एक विशाल काली सिल है जिससे लाल केसर के जल से धो दिया गया है, या नीले आकाश में उषा की यह लालिमा ऐसी लगती है माने स्लेट पर लाल खड़िया या चाक मल दिया गया हो, अथवा यह नीले जल में झिलमिलाती किसी रमणी का गौरा शरीर है जो लहरों के जल में हिलाता दिखाई दे रहा है। लो, अब सूर्य का उदय हो रहा है, धीरे धीरे यह मनमोहक भोर का दृश्य अदृश्य होता जा रहा है। और लास्ट है हमारा व्याख्यात्मक प्रश्न, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। आप लोग यदि ध्यान से ऑडियो सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। आई होप आप लोग एकदम ध्यान लगा के ऑडियो सुने तो आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। शुक्रिया, टेक केयर।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।